ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपां सार्वजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सुजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाकान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाक्षन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेन च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो आज जैसे प्रभु जी ने कहा श्री वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव क्या है, दिवस है, तो इसे बहुत पवित्र दिन है। और वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कुछ समय के लिए हम सुनने का प्रयास करेंगे। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य लीला के व्यासदेव हैं। कौन है? चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। तो कृष्णदास कविराज एक महान हमारे संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। तो उनसे पूर्व ये वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनकी जो लीलाएं हैं उनको लिखित रूप दिया था। जैसे भगवान कृष्ण इस जगत से अपनी लीलाएं प्रकट करके इस संसार से विदा लेते हैं एक प्रकार से। हाँ, कृष्णे सुधाम पगते धर्म ज्ञाना दिवि सहा नष्ट कलो दृशामेश पुरानो अर्को अधुनो उदित। कि कृष्ण अपने स्वधाम में चले जाते हैं और जाते जाते अपने साथ धर्म ज्ञान आदि को ले जाते हैं, लेकिन भगवान एक चीज इस जगत में छोड़कर चले जाते हैं। राधा रानी ने भी एक चीज छोड़कर चले गए थे और कृष्ण भी एक चीज छोड़कर चले गए। राधा कृष्ण किसको छोड़कर चले जाते हैं? शुकदेव गोस्वामी को। वास्तव में शुका राधा रानी का जो तोता है जिसका कार्य है राधा रानी को कृष्ण कथा कृष्ण नाम आदि सुनाते रहना, ऐसा कोई ब्रजवासी नहीं था वृंदावन में जिनके पास कुछ पेट एनिमल्स नहीं थे। और वो सारे एनिमल्स क्या करते थे, किसका स्मरण दिलाते थे? कृष्ण का। आजकल तो सबके पास ये सारे एनिमल्स हो गए हैं, है ना। टेलीविजन एक एनिमल है, वो तो पूतना राक्षसनी है, वो मेरे सामने ही है। तो आजकल उन एनिमल्स की जो जगह है या स्थान है वो मॉडर्न गैजेट्स ने ले लिया है। तो वहाँ वृंदावन की गोपिकाएं जब उनके घर में पैरट तोता भी होता था तो उसके पास जाकर वो बोलती थी गोविंद दामो धर माधवेती। क्या बोलती थी?
गोविंद दामो धर माधवेती।
हाँ, तो वो तोते भी कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। तो उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी इस जगत से चली जाती है, हाँ, तो इस एक मूल्यवान चीज को पीछे प्रदान करने के लिए हाँ इनको छोड़कर जाती हैं शुक तोता, और वो वास्तव में आगे चलकर शुकदेव गोस्वामी के रूप में भगवान की ब्रज लीला कहानी, हाँ, जो स्टोरीज हैं कृष्ण लीला, उसका वर्णन करते हैं किसके लिए, राजा परीक्षित के लिए। तो इस प्रकार से भगवान अपने पीछे अपनी जो लीलाएं हैं उनको छोड़कर जाते हैं और जो शिक्षाएं हैं, और इतनी शक्तिशाली हैं। लेकिन जब कलयुग आता है तो कलयुग के लोगों का बुद्धि बहुत मंद है, मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। सूत गोस्वामी पहले स्कंद में कहते हैं कलयुग के लोग इतने मंद बुद्धि के हैं और थोड़ी थोड़ी बातों से उपद्रता में लड़ाई झगड़े करते हैं, वैसे तो मौका ढूंढते हैं लड़ाई करने का, घर में बाहर, हाँ, कार को कार छोटी सी लग ना जाए तो उतर के बाहर आ जाते हैं, हाँ? कलयुग के लोग हमेशा फाइट करना चाहते हैं, मंद सुमंद मतयो। तो फिर ऐसे लोगों का कैसे उद्धार होगा, उसके लिए हाँ भगवान हाँ एक विशेष शक्त्यावेश अवतार धारण करते हैं प्रकार से, और वो कौन थे, व्यास देव मुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनका जन्म द्वीप में हुआ था इसलिए उनको द्वैपायन कहते हैं। कृष्ण बहुत काले वर्ण के थे, कृष्ण द्वैपायन व्यास देव दिखने में इतने सुंदर नहीं थे, हाँ सुंदर हृदय होना चाहिए, शरीर की सुंदरता ज्यादा मायने नहीं रखती, हाँ, तो इसलिए तो व्यासदेव कलयुग के लोगों की सिचुएशन को देखते हैं तो फिर एक अद्भुत कार्य करते हैं, क्योंकि कलयुग के लोग बाकी युगों में जितने भी लोग थे वो श्रुतिधर थे, एक बार गुरु आदि के माध्यम से सुनते थे तो उसको धारण करते थे, इसलिए उनको श्रुतिधर कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कलयुग में श्रुतिधर खत्म हो गए, अभी कुछ भी धारण करना है वॉइस तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, है कि नहीं, तो ये एक विशेष गुण है हमारे पास, ये वरदान है, हाँ, इससे एक प्रकार से केवल ये भावना का उदय होता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, क्या हो, इसलिए तो किससे कंट्रोल करते हैं हमारे समय, उंगलियों से, पहले इशारे से ऐसे कंट्रोल करते थे, राजा महाराजा है अपने आईब्रो से किसी को कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अभी कैसे कंट्रोल करते हैं हम अपने इससे उंगलियों से, और चाहे वो रिकॉर्ड हम कर भी लेते हैं तो हमारे पास वो सामर्थ्य कि हम उसको रिवाइंड भी कर सकते, पीछे ला सकते, पॉज कर सकते हैं। इस प्रकार से कलयुग के लोगों के पास धारण करने की कोई ऐसी क्षमता नहीं है, हाँ, इसी कारण से व्यास देव देखते हैं कि इनको याददाश्त इनकी क्या है, बहुत वीक है। अभी अभी सुबह ब्रेकफास्ट क्या होगा, क्या पाया होगा, तो अभी पूछा जाए तो 5 मिनट हाथ ऐसे पकड़ के बैठे रहेंगे, क्या खाया था मैंने कल शाम को, क्या खाया था, हाँ, तो इतने वीक है कलयुग की जो ब्रेन है। तो इस प्रकार से जब ऐसी स्थिति को देखा कलयुग के श्रुतिधर नहीं है तो फिर उन्होंने क्या किया, लिखित रूप प्रदान किया सारे शास्त्रों को। तो व्यासदेव बहुत पावरफुल थे, बोल सकते थे वो, लेकिन उन्होंने सोचा मैं बोलूंगा भी, मैं खुद भी लिखूंगा तो कैसे होगा, मैं कभी कभी सोच रहा था शायद उनका हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने सोचा किसको उन्होंने नियुक्त करने के लिए सोचा, तो किसको उन्होंने बुलाया, गणेश जी को, लॉर्ड गणेशा, गणेशा आते हैं, आप बद्रीनाथ जाओगे तो वहां गुफा है, कुछ साल पहले गए थे हम, तो वहां गणेश जी को बुलाया, और ऐसे नहीं कि एक ही गुफा में बैठ के दोनों ने लिखा, एक का गुफा यहाँ था और एक का वहां, हाँ, ताकि यहां से, क्योंकि गणेश जी ने कहा कि मैं तो आऊंगा लिखने के लिए आऊंगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप लिखूंगा, जैसे बीच में पॉज हो गया आपके बोलने में तो फिर मैं परमानेंटली पॉज लूंगा, चला जाऊंगा, हाँ, तो फिर व्यासदेव सोचते कि अच्छा व्यासदेव से बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। हाँ, तो व्यासदेव साक्षात कृष्ण के शक्तावेश अवतार है। तो व्यासदेव बोलने लगे, व्यासदेव ने कहा मैं बोलूंगा लेकिन समझ कर लिखना है, ऐसे लिखना है। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, सुन भी बहुत लेते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। हाँ, तो इस प्रकार से फिर इतना बोलने लगे कि व्यास गणेश जी सोच सोच के लिखना लिखते जा रहे थे, और फाइनली गणेश जी ने ये लिखित रूप दिया। किस चीज का? और उसमें ये लिखा, सारे ग्रंथ एक प्रकार से लिख डाले, और श्रीमद् भागवतम उसमें अमूल्य रत्न था। तो गणेश जी ने ये शब्द लिखे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गणेश जी क्या शब्द लिखे उन्होंने? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आजकल के लोग कृष्ण को छोड़कर किसकी आराधना करते हैं? गणेश की। हाँ, तो इस प्रकार से गणेश जी भी यदि उनको कुछ डाउट होता कि अरे मैं स्वयं या मेरे पिता बड़े हैं, उनके पिता भी तो है, कौन है? शिव जी हैं। किसी को आइडियल फैमिली लाइफ जीवित जीना है तो उसके लिए आदर्श उदाहरण कौन है? शिव जी का फैमिली। गृहस्थ जीवन होना चाहिए कैसे? सुव्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड, बैलेंस अप्रोच, वो किसका है? शिव जी का है। महादेव वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव का मतलब है कि वो आइडियल है, उदाहरण है। तो उसी प्रकार से शिवजी तो उदाहरण है सब गृहस्थों के लिए। लेकिन हम शिवजी के पास जाते हैं अपनी गृहस्थी की डिमांड पूरी करने के लिए, हाँ, बल्कि ये नहीं देखते कि वो अपना लाइफ कैसे जी रहे हैं। वो देखने के लिए, समझने के लिए हमारे पास क्षमता, बुद्धि या एक प्रकार की योग्यता नहीं है। लेकिन हम शिवजी को अप्रोच करते हैं और जाते हैं और उनसे अपनी इच्छाओं का पूरा एक लिस्ट रखते हैं सामने। और शिवजी बहुत उदार हैं। शिवजी का एक नाम क्या है?
आशुतोष,
जिनको जल्द ही संतुष्ट किया जा सकता है या बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं। तो ऐसे शिवजी भी बहुत एक प्रकार से दयालु हैं। तो ऐसे शिवजी को हमें देखना चाहिए एक आदर्श गृहस्थ के रूप में, और उसके पूरे फैमिली को भी। जनरली हम सुनते हैं उनके परिवार के बारे में, हम दो हमारे दो। शिवजी के लाइफ में कैसे है? हम दो, और उनके कितने पुत्र हैं? कौन कौन है? गणेश और कार्तिकेय। तो वो दोनों भी भगवान के महान भक्त हैं। पुत्र भी कैसे हैं? महान भक्त हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वो इधर उधर जाके सीखते हैं। बच्चों के लिए सबसे पहले गुरु कोई है तो उनकी माँ है। कौन है? माँ। सबसे अधिक बच्चे किसी से सीखते हैं तो अपने माता पिता से सीखते हैं। और माता पिता जी कैसे सीखते हैं? ऐसे नहीं कि माता पिता केवल बोलते रहे बेटा ये करो, वो करो, वो करो, करो करो करो, तो वो ऐसे सीखता नहीं है। बच्चे कैसे सीखते? आप क्या कर रहे हो, आपके आचरण कार्यकलापों को देखकर बच्चे सीखते हैं। हाँ, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो शिवजी और पार्वती निरंतर क्या करते हैं? बैठकर कृष्ण की सेवा आराधना करते हैं, बैठकर मृदंग बजाते हैं। उनके पास तो अपना मृदंग है, क्या है उनके पास? डमरू है, कोई हो या ना हो। और पार्वती देवी करता लेकर बैठ जाती है। ऐसे मुझे याद आया, प्रभुपाद के डिसाइपल थे जिनका नाम है भूरिजन प्रभु, और उनकी पत्नी का नाम मैं भूल गया, जगत तारिणी। तो ये जगत तारिणी देवीदासी हॉलीवुड में एक फिल्म स्टार थी। क्या थी हॉलीवुड में? तो वहां जब ये हॉलीवुड में वो फिल्म स्टार थी, मॉडल थी बड़ी, तो भक्त लोग जहाँ ये हॉलीवुड का एरिया जहाँ सारे हीरोज आदि घूमते रहते हैं या शूटिंग आदि होती है, उसके बाहर जाकर भक्त लोग बहुत कीर्तन करते थे, रोड पर नाचते थे, गाते थे। तो ये एक दिन जब जा रही थी, भक्तों को देखा, अरे हमसे ज्यादा खुश है ये लोग, रोड पर नाच रहे, गा रहे, हाँ चिल्ला रहे हैं, तो ये इसको स्ट्रक हो गया दिमाग में, भक्तों का याद आ गया, रह गया उसको। तो फिर कुछ दिनों में वो कुछ स्ट्रेस में आ गई। स्ट्रेस बड़े बड़े लोगों को यही तो एक समस्या है, उन्होंने वो सीधा नहीं बोलेंगे हम दुखी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे नाम ढूंढ के निकाले, टेंशन, स्ट्रेस। इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है। कोई कहता है ना मेरे पास टेंशन है, स्ट्रेस है, उसका मतलब है कि ये दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा मॉडर्न हूँ। जब तक ये दो चीजें किसी के पास नहीं, तब तक कोई मॉडर्न नहीं है। इस प्रकार से एक बार वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, जैसे और इन लोगों को हमेशा भय रहता है, बुढ़ापे का भय रहता है, चेहरे पर वो ना आ जाए, क्या कहते हैं, झुरिया ना आ जाए। एक मूवी स्टार थी हॉलीवुड में, उसका एक बाल पक गया, वो शीशे के सामने देख रही थी, आपने आपको देखा, एक बाल पक गया, उसके बाद बाहर ही नहीं आई कभी, बस अपने महल के अंदर ही रह गई बचा हुआ जीवन। बहुत वो देखी, कैसे फेस करूंगी, सब लोग मुझे इतना सौंदर्यवान सोचते हैं और मैं अभी क्या होने जा रही हो, बूढ़ी होने जा रही हो। तो ये बहुत अधिक एक बार स्ट्रेस में आ गई, और ये भक्त लोग प्रचार कर रहे थे, और फिर देखा भक्त लोग तो ओपन थे कि उस समय था कि सब लोग मंदिर में फुल टाइम हो सकते थे, माता जी भी फुल टाइम, प्रभु जी भी फुल टाइम। उस समय कोई कांग्रेगेशन नाम की चीज नहीं थी इस्कॉन में, एक ब्रह्मचारिणी आश्रम था, एक ब्रह्मचारी आश्रम था, दोनों फुल टाइम रह सकते हो। तो फिर इन्होंने सोचा अभी क्या जीवन है जिसमें सुखी नहीं है। सोचो सारा संसार क्रिकेट स्टार बनना चाहता है, मूवी स्टार बनना चाहता है, तो उसने सोचा कि बहुत हो गया, अभी बैग पैक कर लेती हूँ और सीधा इस्कॉन टेम्पल में चली जाती हूँ। उसने बैग पैक किया और पहुंच गए मंदिर में, कहते कि मुझे आज से मंदिर ज्वाइन करना है। प्रेसिडेंट तो बहुत खुश हो गए, एक फिल्म स्टार भक्त बन गए। उसने ज्वाइन किया और फिर उस समय प्रभुपाद के एक शिष्य थे भूरीचंद प्रभु, वो हांगकांग की ओर प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मुझे विवाह करना है। तो प्रभुपाद ने ये जो अभी अभी ज्वाइन किया था इसने, प्रभुपाद किसी और जगह थे, प्रभुपाद ने उसको लेटर लिखा कि आप क्या करो उधर चले जाओ और वो एक हमारे भक्त है उनसे विवाह कर लो, अभी एक दूसरे को नहीं जानते हो, देखा भी नहीं। तो वो लोग विवाह करते वहां हांगकांग वगैरह में, जहाँ एक गुरुद्वारा थी, गुरुद्वारा में जाके विवाह करते, और एक ही डिवोटी था विवाह के लिए। और ये दोनों फिर क्या करते हैं, दोनों रोज हरिनाम करते थे, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा प्रचार करो। प्रभुपाद ने क्या कहा था उन दोनों के लिए, आपका जीवन कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो गृहस्थ जीवन का मतलब ही एक रथ है जिसमें दो पहिए हैं, एक है पत्नी और दूसरा है पति। तो ये रथ कहाँ जाना चाहिए, सीधा वैकुंठ धाम, कहाँ जाना चाहिए, वैकुंठ की ओर। अभी हमारे पहिए कई बार पंक्चर हो जाते हैं, कलयुग में तो रथ शुरू ही नहीं होता कई बार। जैसे लोकनाथ महाराज थे, उनका एक अमेजिंग स्टोरी मुझे याद आ रहा है। वो मुंबई में जब थे तो ज्वाइन करना था, तो लेकिन उनके भाई वगैरह आ गए घर से, उनको उठा के ले गए, क्या है हरे कृष्ण में भक्त बन रहे, चलो घर जाओ। घर गए और उनका विवाह करने की तैयारी हो गई, विवाह का दिन भी आ गया, मंडप में तैयार भी हो गए, लेकिन पत्नी मंडप से भाग गई। तो उन्होंने कहा वो फिर प्रभुपाद के पास है, प्रभुपाद ने कहा मैं अभी संन्यास मिला तो नहीं। इस प्रकार से यहाँ गृहस्थ जीवन वही शक्ति संपन्न है, तो वे दोनों रथ के पहिए क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और उनका उद्देश्य होता है भगवान के धाम जाने के लिए। तो ये जब दोनों वहां पहुंचे, इनका भी विवाह हो गया था, लेकिन उन्होंने सोचा प्रचार कैसे करें। प्रचार का बेस्ट माध्यम है रोड पर जाओ और कीर्तन करो। अभी उन्होंने नहीं सोचा कि अरे हम दो ही लोग हैं और लोग होने चाहिए। वो जो प्रभु जी थे भूरीचंद प्रभु, उन्होंने मृदंग गले में डाला, और जो उनकी पत्नी थी उसने क्या किया, करताल। पूरा नगर संकीर्तन, कितने लोग हैं? हाँ सोचो। और रोज कई महीने बीते, रोज ये लोग नगर संकीर्तन में निकलते थे, कीर्तन करते थे और लोगों को प्रचार करते थे। फिर धीरे धीरे उस माता जी ने एक स्कूल में प्रचार करना शुरू किया, तो बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे भक्त बन गए, वो थोड़ा जप करने लगे, कीर्तन करने लगे। फिर उन्होंने लगा, प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि वहां मुझे जाना है, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आप आइए। तो प्रभुपाद वहां जब गए तो बहुत स्वागत आदि किया इन दोनों ने, कुछ लोग भी भक्त बने थे। फिर प्रभुपाद को कहा कि आप प्रवचन दीजिए सारे बच्चों को, सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के इकट्ठा हुए थे। प्रभुपाद ने लेक्चर देना शुरू किया और प्रभुपाद ने लेक्चर में बोला, संसार दावा नल लीन लोका त्राणाय कारुण्य धनागमनम्। इसमें प्रभुपाद बोल रहे थे कि ये संसार दावाग्नि के समान है, जहां हर एक व्यक्ति भौतिक कष्टों से जल रहा है, दिन रात तप रहा है। तो जब प्रवचन खत्म हो गया तो एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया। प्रभुपाद ने कहा एनी क्वेश्चंस? छोटे से बच्चे ने हाथ ऊपर किया। प्रभुपाद ने कहा खड़े होकर बोलो। वो बच्चा खड़ा हो गया। उसने कहा प्रभुपाद आपने जो आग के बारे में बोला था, ये आग किसने लगाई? क्या पूछा उसने? प्रभुपाद ने कहा जो दावा नहीं है ना, ये कोई लगाता नहीं है, आपने आप लग जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में दावाग्नि, ये जो कष्ट है, ये अपने आप समंदर के लहरों के भांति जीवन में एक के बाद एक ऐसे आते रहते हैं। इस प्रकार से जो शिव जी हैं और पार्वती हैं, वो दोनों क्या करते हैं? करताल मृदंग लेकर गाते रहते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जब अपने घर से बाहर से अंदर आते थे और देखते थे कि घर में कीर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको वो कहते हैं जे दिन ग्रहे भजन देखे ग्रहे ते गोलो को भाए। जिस दिन मैं अपने घर में देखता हूँ घर में कीर्तन हो रहा है, वो घर घर नहीं है, वो क्या महसूस होता है? गोलोक वृंदावन। जहाँ भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन कीर्तन आदि होता है, वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वो वैकुंठ में परिवर्तित हो जाता है। और इसीलिए ये जो घर है वो वास्तव में घर को भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? भवन मीन्स जहाँ भगवान का निवास स्थान है, भवन मीन्स भगवान। और यदि भवन में भ को हटा दे हम तो क्या बचता है? वन। तो यदि घर हो बहुत सारा सुंदर लेकिन जिसमें भगवान केंद्र बिंदु नहीं है, सेंटर नहीं है, तो वो घर घर नहीं है, वो जंगल है, वन है। हाँ, वहां सारे पशु निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? और पशु आपस में लगड़ते झगड़ते रहते हैं और फाइनली मर जाते हैं। तो इसी प्रकार से वास्तव में घर की शोभा किन चीजों से बढ़ती है? भगवान से। घर की शोभा बढ़ती है जब घर में घर का इस्तेमाल हम भगवान की सेवा हेतु करते हैं। भक्त लोग आए और क्या करें? हरे कृष्णा, जोर से
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नहीं तो प्रहलाद महाराज जो छोटे से बालक थे, प्रहलाद महाराज छोटे थे दिखने में लेकिन भगवत भक्ति में बहुत उन्नत थे, मतलब ऐसे पावरफुल डिवोटी थे प्रहलाद महाराज कि जिनके लिए भगवान साक्षात नरसिम्हा देव के रूप में प्रकट होते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यदि ये जो भी वस्तुएं हैं गृहस्थ जीवन में जिनको हम कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल नहीं करते तो वो वस्तु हमारे कष्ट का कारण बनेगी, क्योंकि एक व्यक्ति गृहस्थ व्यक्ति घर के हर एक वस्तु में आसक्त रहता है। क्या रहता है? छोटी छोटी चीज में भी आसक्त हो जाता है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन वो स्वयं एक रेशम के कीड़े के भांति हो जाता है, जो कीड़ा अपने इर्द गिर्द जाल बुनाता है। सही है शब्द? बुनाता है, बुनता है, बुनता है जाल, और वो उसके अंदर मर जाता है। हाँ, वैसी सिचुएशन है। इसलिए कई बार हम कभी कभी व्यक्ति को घर में बड़ा वैराग्य आ जाता है कई बार, और वो वैराग्य थोड़े समय का होता है, एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर से उसमें लिप्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ये शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि, और वास्तव में प्रहलाद महाराज को जब उनके पिता ने पूछा कि हे बेटा, आप बहुत दिनों से बोर्डिंग स्कूल में गए हो, लंबे समय के बाद आए हो, आप बताओ क्या पढ़ के आए हो, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या सीखे आपने। तो प्रहलाद तो बड़े उत्साहित थे, कई बार बच्चे होते ना बहुत दिनों के बाद आते हैं और माता पिता को पूछे तो बड़े लाड़ प्यार से बोलना चाहते। तो पिता ने, उनकी माँ ने बड़ा उनका श्रृंगार आदि किया था, दुलाया, स्नान आदि किया करवाया था। फिर हिरण्यकश्यप ने बेटे को उठाया, गोद में बिठाया, गोद में बिठाकर अपने बेटे को गोद में बिठाकर हिरण्यकश्यप बहुत चीजें पूछ रहा था। उन्होंने कहा सबसे बेस्ट चीज क्या सीखी, जैसे हम यात्रा में जाते तो पूछते ना क्या बेस्ट लगा आपको, तो वैसे ही इनको पूछा क्या बेस्ट पढ़ाई में क्या पढ़ा आपने। तो उन्होंने क्या बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सख्यम आत्मनिवर्तनम। तो कहते हैं उन्होंने कहा सबसे बेस्ट चीज मैंने ये सीखी है, श्रवणम करना सीखा है। क्या करना सीखा है? हाँ, तो श्रवणम भक्तिमय जीवन का शुरुआत है। और मतलब भगवान को किसी एक इंद्रिय के द्वारा हम जान सकते हैं तो वो केवल किसके द्वारा जान सकते हैं, कान के द्वारा। मतलब भगवान इतने दयालु हैं, बाकी इंद्रियों से हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, बहुत कठिन है, लेकिन एक इंद्रिया बहुत पावरफुल है जिसके द्वारा हम कृष्ण को समझ सकते हैं, और वो है हमारे कान। और कृष्ण किसी चीज से हमारे हृदय में जाते भी है तो कौन सी चीज से जाते हैं, कान के माध्यम में। इसलिए भागवत में कहते हैं प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, कि प्रविष्ट में प्रवेश करता हूँ, कान के रंध्रों से हृदय में प्रवेश करता हूँ। और हृदय में जाकर भगवान कहते हैं शुन्मता श्रद्धया नित्यम, कि जो श्रद्धा के साथ नित्य मेरे बारे में सुनता है उसके हृदय की मैं धुलाई करता हूँ। क्या करता हूँ? आप कुछ भी किसी को भी लगाओ, कोई ऐसा है इस संसार में जो आपके हृदय को साफ कर सकता है, कोई आपके हृदय में प्रवेश कर सकता है? नहीं। कृष्ण कहते हैं मैं झाड़ू वाला बन जाता हूँ जो मेरे बारे में सुनता है। और इसलिए है सबसे सरल और सबसे पावरफुल विधि है भगवान के बारे में सुनना। इसी कारण से प्रहलाद ने सबसे पहले चीज अपने पिता को बोला कि पिताश्री, वो कभी अपने पिता को पिताश्री नहीं कहते थे, या डैडी भी नहीं कहते थे, पापा भी नहीं कहते थे, क्या कहते थे? आसुर वर्य। क्या कहते थे? बोलिए सब, घर में जाके आपको पिता को क्या बोलना है? आसुर में श्रेष्ठ जो डिवोटी पिता नहीं है वो आसुरी है। कौन है? आसुर है, हिरण्यकश्यप के अनुयायी है। तो ऐसे परीक्षा प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैंने कुछ सीखा है सबसे बेस्ट, तो भगवान विष्णु के बारे में सुनना। और जब तक हम सही रूप से सही मायने में नहीं सुनेंगे तो फिर आगे की एक भी चीज हमसे नहीं हो सकती, ना कीर्तनम हो सकता है, ना स्मरणम हो सकता है, ना पाद सेवनम आत्मनिवे, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सुनने से ये कान हमें वैकुंठ ले जा सकता है। कहाँ ले जा सकता है? और यही कान हमें मृत्यु की ओर ले जा सकता है। तो जब हम सुनते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कह सकता है अरे इतने सालों से तो सुन रहा हूं, कुछ हुआ ही नहीं अभी मेरे साथ। हाँ, लेकिन वास्तव में हम सही रूप से भगवान के बारे में नहीं सुन रहे हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारे हृदय में विनम्रता का भाव धारण करना, ह्यूमिलिटी को, विनम्रता को धारण करके हमें सुनना चाहिए। वैसे हम पहले पूछते हैं किसका प्रवचन है, कौन प्रवचन देने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, वो प्रभु जी उनका स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, वो बोलते हैं कौन सी भाषा बोलते हैं, और वो है ना, ये सब चीजें हम सोचते रहते हैं। तो सबसे प्रॉब्लम क्या है, फिर विनम्रता यही हमारी पता चलती है। अभी सोचने लगते क्या बोलेंगे, वो जो बोलते वो सब पता है मुझे, वो बोलेंगे हरि नाम का जप करो, कृष्ण प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है, आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो, आत्मा हो। अभी यही चीजें बोलेंगे वो प्रभु जी। तो इससे पता चलता है कि हमारा हृदय इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो जब हम विनम्रता भावना से नहीं सुनेंगे तो कभी भी, चाहे हम हजारों सालों तक सुनते रहेंगे, तो हमें कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता। तो ऐसे प्रहलाद महाराज, जिनके लिए नरसिम्हा देव एक पिलर से बाहर आ गए, और ऐसे नहीं कि पिलर से बाहर आ गए, आकर उन्होंने उनको उठाया, लक्ष्मी शिव जी ब्रह्मा सबको दूर भगाया, और प्रहलाद को उठाकर कहां बिठाया, गोद में, और गोद में बिठाकर उनके उनको ऐसे सहलाया, और देखा अरे मुझसे ज्यादा खुश लग रहा है बच्चा, और इतना ही नहीं आपने जीवा से क्या किया, उनको छाटा। ऐसे प्रहलाद जब बड़े हो जाते, राजा बनते हैं, एक दिन बाहर निकलते भ्रमण के लिए। जब भ्रमण के लिए बाहर निकलते प्रहलाद भ्रमण करते हैं अलग अलग स्थानों में, और भ्रमण करते करते वे एक स्थान में पहुंचते हैं। एक जगह जब प्रहलाद पहुंचे राजा, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हम बिल्कुल एक कोने में पड़ा हुआ है, जिसको कुछ अपनी सुध बुध नहीं है, लेकिन प्रहलाद महाराज ने उनको पहचान लिया, ये एक महान भक्त है। जो कौन थे, अवधूत ब्राह्मण थे, कौन थे, ऐसे अवधूत ब्राह्मण के पास जाकर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप मुझे बताइए जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या पूछ रहे प्रश्न, कब पूछ रहे हैं, सोचो, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, जिनके लिए भगवान अवतरित हो गए हैं, भगवान के सबसे करीब हैं, लेकिन फिर भी वो सुनने से कतराते, वो बल्कि ढूंढ रहे डिवोटी को जिनको केवल प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि उनसे भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुना जाए। तो भक्त की जो बेस्ट सेवा है वो ये है, उनके माध्यम से हम क्या करें, सुने। इससे बढ़कर सर्विस डिवोटी की नहीं है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा सावधान रख करवाते थे अपने डिवोटीज को कि ध्यान पूर्वक सुनो भगवान के बारे में। इतना ही नहीं, हाँ, देवहूति माता देवहूति जिनके पुत्र साक्षात भगवान कपिल हैं, वो भी उनको पूछती है कि मुझे बताइए मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सनातन गोस्वामी इतने महान आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं और उनसे क्या पूछते हैं, के आमी केने आमाय जारे तापत्र, में कौन हूँ, क्यों इस संसार में मुझे तीन प्रकार के कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में इतने महान महान आचार्य हमें शिक्षा दे रहे हैं। उसी प्रकार से भागवतम में पृथु महाराज के बारे में वर्णन आता है। पृथु महाराज इतने पावरफुल राजा थे कि जिनके लिए भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, और भगवान विष्णु प्रकट होकर उनको ये आशीर्वाद देते हैं कि जल्दी महान भक्तों से आपका, हाँ, महान भक्तों के आपको दर्शन होंगे और जिनके द्वारा आप श्रवण करोगे। तो उनके लिए चार कुमार प्रकट हो जाते हैं पृथु महाराज के लिए, और प्रकट होकर पृथु महाराज उनसे यही प्रश्न पूछते हैं कि मुझे बताओ मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इतने परफेक्शन को प्राप्त किए हुए भक्त भी अपने बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में, भगवान के बारे में सुनने के लिए सदा तत्पर है। लेकिन हमारी अवस्था दयनीय है, हम तो सुनने से हमें भागते हैं। हाँ, तो मतलब एक घंटा हम सुनते हैं, और यदि ध्यान पूर्वक सुनते हैं विनम्रता की भावना को धारण करके, तो समझना चाहिए कि ये एक घंटा मुझे कृष्ण के नजदीक ले जा रहा है। यदि उसी में हम इनअटेंटिव होते हैं, तो समझना चाहिए कि एक घंटा मुझे मृत्यु के नजदीक ले जा रहा है। या तो कृष्ण के नजदीक जाओ, या किसके नजदीक जाओ, मृत्यु के नजदीक। हाँ, तो इस प्रकार से महान प्रहलाद महाराज आदि आचार्य ये शिक्षा देते हैं। इवन प्रभुपाद के जीवन में भी, हाँ सुन सुन के भी, जो प्रभुपाद है भक्ति सिद्धांत महाराज उनको एप्रिशिएट करते थे, क्योंकि मुझे आपका एक गुण बहुत अच्छा लगता है कि आप गंभीरता से सुनते हो और फ्यूचर में आप हाँ अच्छे से बोल भी पाओगे, प्रचार करोगे। और प्रभुपाद ने वैसे किया भी। प्रभुपाद को पूछा आप इतना कैसे बोल पाते हो, प्रभुपाद ने कहा मैंने अच्छी तरह से क्या किया है, सुना है। तो श्रवणम ही हाँ सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हरि नाम भी हम हरि नाम जप करते रहते लेकिन परिवर्तन नहीं है, उसका मतलब हम हरि नाम को सुन नहीं रहे हैं। इसलिए श्रवणम क्या है, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, इसके बारे में सुनना। हाँ बल्कि हमें सोचना चाहिए बुढ़ापा आएगा तो ये कान नहीं सुन पाएंगे, शरीर नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए मुझे अपनी युवा अवस्था में ही भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनना चाहिए। जब हम गंभीरता से विनम्रता की भावना से और सुनते हैं तो वास्तव में फिर हम भगवान के नजदीक पदार्पण करते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में देखा जाए हाँ ये जो गृहस्थ आश्रम है इसमें हम हाँ यदि इस चीज को नहीं डालते श्रवणम कीर्तनम, कलियुगा में विशेष रूप से ये दो चीजें पावरफुल है, श्रवणम करना कीर्तनम करना। कीर्तनम भगवान के नाम का है, भगवान के रूप गुण लीलाओं का भी है। इसलिए ये दो चीजों को अधिक से अधिक हमें अपने जीवन में डालना चाहिए। जिनके बारे में अधिक से अधिक आप सुनोगे, जिनके बारे में बोलोगे, उनसे आपको आसक्ति निर्माण होगी, उनके प्रति एक अफेक्शन या प्रेम की भावना उदित होगी। इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में गृहस्थ जीवन में हमें अधिक से अधिक इस चीज को डालना चाहिए। और यही है शिवजी का पारिवारिक जीवन। शिवजी के पारिवारिक जीवन में वो दोनों मिलकर निरंतर भगवान की महिमा या गाथा को सुनते हैं और भगवान का निरंतर गुणगान करते हैं। और जिसी कारण से शिवजी और पार्वती लगे हुए हैं कृष्ण की सेवा में, इसलिए उनके दो बच्चे भी किसकी सेवा में लगे हैं, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बारंबार मैं कहता हूं कि जो माता है वो वास्तव में सबसे पहले गुरु है, पत्नी के लिए सबसे पहला गुरु एक प्रकार से पति है, लेकिन आजकल मुश्किल है। हाँ वो पति खुद भक्त नहीं है तो पत्नी को कैसे शिक्षा देगा। तो उसी प्रकार से माता हाँ बच्चों की सर्वप्रथम गुरु है, जिनसे बच्चे क्या करते भगवान के बारे में सीखते हैं और वो महान भक्त बन सकते हैं। इसलिए इसी कारण से हम देखते हैं वृंदावन दास ठाकुर जिनकी माँ बहुत अच्छी डिवोटी थी, क्या नाम था उनका, नारायणी देवी। चैतन्य महाप्रभु जब शिवा सांगन में थे, शिवा सांगन में चैतन्य महाप्रभु हर रात्रि में कीर्तन करते थे, तो उस समय नारायणी देवी की आयु 4 साल की थी, इतनी छोटी सी थी। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि श्रीवास ठाकुर के हृदय में भय है और भगवान देखते हैं, भगवान को यह सहन नहीं होता कि उनके भक्त के हृदय में भय आ जाए, इसलिए भगवान भय को निकाल देते हैं अपने भक्त के हृदय में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीवास क्यों भयभीत हो, क्योंकि श्रीवास ठाकुर नवद्वीप में अपने चारों भाइयों के साथ दिन रात कीर्तन आदि करते थे, हरि नाम करते थे, लेकिन आसपास के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा ये लोग, ये तो इनको तो मुस्लिम राजा ने पकड़ के ले जाना चाहिए। तो ये इनको भय था कि इन लोगों ने कहा कि जल्दी राजा के सैनिक आएंगे, श्रीवास ठाकुर को पकड़ कर ले जाएंगे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु आए उनके पास, कहा श्रीवास आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, यदि वो राजा के सैनिक आएंगे तो सबसे पहले नाव में मैं बैठूंगा और मैं उनके साथ जाऊंगा और वहां जाकर उस मुस्लिम राजा को कहूंगा कि आपके यदि ये जो काजी मुल्ला जिनकी बात सुनकर आप हरि नाम को रोक रहे हो, यदि उनके अंदर यदि बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उनको बोलो कि इस दरबार में जितने लोग हैं उनको रुला के दिखाओ या आपके सैन्य में जितने हाथी घोड़े आदि हैं उनको रुला के दिखाऊं, तो मैं समझूंगा कि आपके काजी मुल्ला बहुत पावरफुल है। और यदि उनसे नहीं होगा तो मैं उनको कहूंगा कि मैं अभी इन सबको रुला के दिखाऊंगा। तो श्रीवास ठाकुर को लग सकता है कि चैतन्य महाप्रभु केवल बोल रहे, करके नहीं दिखा सकते, रुला के नहीं दिखा सकते कृष्ण के लिए। तो उस समय छोटी सी नारायणी 4 साल के बाद एक कोने में खड़े थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो हाँ, इस नारायणी छोटी सी बालिका, वहां इसको मैं रुलाता हूँ वो कृष्ण के लिए रो पड़ेगी। तो चैतन्य महाप्रभु उस बालिका को कहते हैं, नारायणी कृष्ण बलिका, नारायणी कृष्ण बोलते हुए रो। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तो छोटी सी बालिका किसके लिए रो पड़ी? कृष्ण के लिए। छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल के लिए रोते रहते हैं, और उसके लिए रोते रहते हैं, ब्रेड और इन चीजों के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको रुलाया कृष्ण के लिए। हाँ, इस प्रकार से वो नारायणी चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करती है। और आगे चलकर जब उनका विवाह होता है, एक महान पुत्र को जन्म देती है, जिनका नाम क्या था? वृंदावन दास ठाकुर, जिनका आज तिरुभाव है। तिरुभाव मीन्स ऐसे महान भक्त आज इस संसार से चले जाते हैं, हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर महान भक्त हुए और वो नवद्वीप में ही एक प्रकार से निवास करते थे, नवद्वीप के पास। और फिर नित्यानंद प्रभु के वो आखिरी शिष्य है, नित्यानंद प्रभु ने उनको पर्सनली दीक्षा दी है। और नित्यानंद प्रभु ने उनको दीक्षा देकर एक आज्ञा दी, ऑर्डर दी, इंस्ट्रक्शन दिया कि आप क्या करो, चैतन्य महाप्रभु के जो पास टाइम से लीलाएं हैं उनको लिखित रूप प्रदान करो। तो वृंदावन दास ठाकुर का प्रेम चैतन्य महाप्रभु से अधिक नित्यानंद प्रभु के लिए था। और उन्होंने वो ग्रंथ लिखा चैतन्य भागवत, जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से भरा हुआ है। और कभी कभी वो नित्यानंद प्रभु का बीच में शुरू करते थे तो इतने प्रेम से उमड़ जाते थे नित्यानंद प्रभु के प्रति कि कई सारी लीलाएं नित्यानंद प्रभु की उन्होंने लिख डाली, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अलावा। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर, हाँ, जिन्होंने ये महान ग्रंथ हमें प्रदान किया है, इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य लीला रे व्यास वृंदावन दास, चैतन्य लीला के व्यास देव कोई है तो वृंदावन दास ठाकुर है। तो ऐसे वृंदावन दास ठाकुर का हमें आज स्मरण करना चाहिए और जिनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। बल्कि जब वो इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं तो उसमें वो लिखते हैं, पुना भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार जिह्वाय स्फुरुक गौर चंद्र अवतार। वो एक प्रार्थना करते हैं और वास्तव में बहुत आइडियल प्रार्थना है, जब हम विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलना चाहते हैं। वो कहते हैं पुना प्रभु संगे, हाँ, पुना भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार। मैं भक्तों के संग में उनकी कृपा को लेकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? जिवाय स्पुरुक गौर चंद्र अवतार, मेरे जिवा में चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं स्फुरित हो जानी चाहिए। हाँ, तो वास्तव में भगवान हमसे बुलवाते हैं, उनका गुणगान करवाते हैं। यदि हम उनका गुणगान करने के लिए थोड़ा सा क्या है, सीरियस और सिंसियर है, तो इस कारण से वृंदावन दास ठाकुर से भगवत लीला की स्मरण आदि की कृपा की याचना करनी चाहिए। तो ऐसे महान आचार्य अपनी माता के कारण महान भक्त बने। फिर से उनके मदर का नाम क्या था? नारायणी देवी। मुझे और एक मदर का याद आ गया, जगन्नाथ की लीला। उस दिन में रथ यात्रा के दिन सुबह सुबह एक छोटा सा लेक्चर दे रहा था टेंपल हॉल में, तो उसमें एक डिवोटी के बारे में बोल रहा था जिनका नाम था सालबे, मैं उनके बारे में बोल देता हूँ फिर हम विराम देंगे। तो उड़ीसा में वैसे भी आजकल जगन्नाथ का वो फैला हुआ है, क्या है, नव कलेवर। सब जगह लोग जगन्नाथ जी के बारे में कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ स्मरण कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो और फिर तो वैसे ही जगन्नाथ देव की दो विशेषता हैं विग्रह की। एक है भक्त वत्सल है वो बहुत, और दूसरा है भक्त अधीन है। हाँ, ये दो चीजें हैं। मतलब एक तो वत्सलता मीन्स जैसे मदरली अफेक्शन है, अपने भक्तों के प्रति भगवान का कैसा अफेक्शन है, मदरली अफेक्शन, जैसे माँ अपने पुत्र आदि से प्रेम करती है संतानों से, वैसा अफेक्शन भगवान का है। और दूसरा है भक्ताधीन मीन्स कि भगवान अपने भक्तों के अंडर एक प्रकार से उनके कंट्रोल में हो जाते हैं। जैसे यशोदा माता के कंट्रोल में कौन है, कृष्ण है। हाँ, जैसे राधा रानी भी कृष्ण को कंट्रोल करती है, इसलिए कृष्ण, राधा रानी का नाम क्या है, मदन
मोहन
मोहिनी। तो वैसे ही उसी समय भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं। तो वहां जहां मुस्लिमों का शासन था बंगाल और बिहार पर, तो बिहार में एक मुस्लिम सूबेदार थे जिनका नाम था लाल बेग। क्या नाम था,
लाल बेग।
तो लाल बेग ये बिहार के सूबेदार थे, और जब देखा कि बंगाल के सूबेदार की मृत्यु हो गई है तो इनको इनका ट्रांसफर हो गया, बंगाल में आ गए। बंगाल से उन्होंने देखा उड़ीसा बहुत नजदीक है, जहाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ है, तो उन्होंने लगा कि उड़ीसा को मैं कॉन्कर करता हूँ, विजय प्राप्त करता हूँ, जीत लेता हूँ। तो ये जो मुस्लिम शासक था अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ उड़ीसा को जीतने के लिए निकल पड़ा, और वो उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास एक टाउन है कटक, वहां निवास करने लगा। फिर एक दिन ऐसे निकल पड़ा, तो एक स्थान में जाता है जगन्नाथपुरी की ओर, तो वहां एक छोटा सा गांव आता है, जहां जाते जाते अपने घोड़े के ऊपर वो जा रहा था, तो जाते जाते उसने उस गांव के पास तालाब के किनारे एक सुंदर युवती को देखा जो स्नान कर रही थी, और उन्होंने सोचा कि इसको मेरी अपनी पत्नी बनाता हूँ। तो सुंदर युवती थी, विधवा थी युवावस्था में ही, और वो हिंदू युवती थी। इन्होंने जबरदस्ती उनको उठा लिया वहां से, अपने घोड़े में डाला और वो ले गए, जिनका नाम ललिता था, और उसको अपना रानी बनाया। फिर उनका नया नामकरण किया उसने जाकर, फातिमा बेबी ये नाम दिया उन्होंने। फिर ऐसे एक, और वो बहुत महान भक्त थे, उसका प्रेम जगन्नाथ के लिए बहुत अधिक था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो रहे, कालांतर में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम हुआ सालबेग। क्या नाम हुआ,
सालबेग।
इतना धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो शस्त्र आदि विद्या में बहुत निपुण हो गया। एक दिन अपने पिता न होकर एक जगह युद्ध के लिए जाता है, तो युद्ध जब करने लगता है तो बहुत घायल होकर युद्ध स्थल में गिर पड़ता है। सारे सैनिक उनको उठा कर ले आते हैं और उनकी माता के पास छोड़ते हैं। तो वो जो उनका पिता था वो अभी इन दोनों को छोड़कर चला गया था, ये लोग कटक में निवास कर रहे थे। और इनकी माता ने सोचा, अपने उनके बेटे को देखा कि इतने सारे घाव बॉडी में हैं और बिल्कुल मृत्युशैया पर लेटा हुआ है, मरने वाला है। ये इनकी मौन की माता उनके पास बैठकर उनकी सेवा करने लगी, आंसू उसके बह रहे थे और वो पुत्र भी रो रहा था। वो कह रहा था अपनी माता को कि बेस्ट है कि मैं आत्महत्या कर लूं, अपने शरीर को त्याग देता हूं कि सारे कष्टों से परमानेंटली मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो उनकी मां ने कहा नहीं, ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा आप तो मेरे आंखों के तारे हो, आप मर जाओगे तो मैं भी अपना जीवन नहीं धारण कर पाऊंगी। तो फिर उस समय वो कहता है कि क्या मुझे क्या करना चाहिए। तो माता महान भक्त थी भगवान की, कृष्ण की, उन्होंने उनको सोल्यूशन दिया। क्या सोल्यूशन दिया होगा, भगवान का भजन करो। मतलब मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है, उनको वो कहने लगी उनकी मदर कि वास्तव में एक चीज तुम करोगे तो ये सारे कष्टों से मुक्त हो जाओगे, भज वृंदावन चंद्र। उन्होंने कहा कि आपको वृंदावन चंद्र का भजन करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा ये वृंदावन चंद्र कौन है। उनकी माँ को इतना आनंद आ गया कि मेरा बेटा जानना चाहता है। उसने वो रोने लगी, इतने साल हो गए मुझे, मैं तो भगवान कृष्ण के बारे में बोलना चाहती हूँ, मैं ऐसे स्थान में गिर गई हूँ कि जहाँ कृष्ण का नाम मैंने कभी सुना नहीं इस मुस्लिम परिवार में आज मेरे वास्तव में भाग्य का उदय हो गया है। और वास्तव में भाग्यशाली व्यक्ति कौन है इस संसार में जिसकी रुचि भगवान के बारे में सुनने में हो गई है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में प्रद्युम्न मिश्र नाम के ब्राह्मण जब आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट की कि आज मुझे आप कृष्ण के बारे में सुनाओ, चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा, अरे अमेजिंग, आप इस संसार के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो कि आपके हृदय में कृष्ण के बारे में सुनने की डिजायर जागृत हो गई है। तो इस प्रकार से उनकी माँ वास्तव में अपने आप को भाग्यशाली सोचने लगी कि आज मुझे मौका मिल रहा है कृष्ण के बारे में बोलने का, कृष्ण के बारे में सुनने का। नहीं तो इस संसार में भौतिक चीजों को सुनते और बोलते रहते हैं। तो वो बोलने लगी कि कृष्ण वास्तव में नंद महाराज के पुत्र हैं, उनकी एक मदर भी है। क्या नाम बोला होगा उन्होंने, क्या बोला होगा, जोर से बोलिए। तो जब यशोदा के बारे में बताया, फिर उन्होंने कहा कि श्रीमती राधा रानी है, गोपिकाएं हैं, उनके गौल सखा है, ब्रज भूमि है, यमुना है, कितना कुछ है कृष्ण के बारे में। हमें कहा जाए अभी माइक देकर कि सबको 5 मिनट कृष्ण के बारे में बोलना है, टेंशन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, 5 मिनट क्या बोलेंगे कृष्ण के बारे में। वो माता गदगद हो रही थी, आनंद अश्रु बह रहे थे कि आज मैं किसके बारे में बोलूंगे, कृष्ण के बारे में। हाँ, तो क्योंकि वो कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करते थे। जैसे किसी माँ को बोला जाए अपने बच्चे के बारे में बोलो, तो वो बोलती रही, क्यों, क्योंकि उसको किससे प्रेम है, बच्चे से है, उसके कपड़े, उसके शूज, उसके स्कूल, सब कुछ बोलती रहेगी। कई बार होता है ना, कोई एक स्त्री दूसरे स्त्री को मिलती है घर में, तो अपने बच्चे का इतना बोलती रहती पूरा 1 घंटा, खत्म ही नहीं होता। तो वैसे ही वो बोलने लगी और उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया कि कृष्ण जिनकी आंखें कमल नयन के भांति हैं, जो अंगावेक गजब गजब जो मोती है वो अपने नासिका में धारण करते हैं, उन्होंने कानों में मकर कुंडल धारण करते हैं, पीत वस्त्र पहनते हैं, वनमाला धारण करते हैं, श्रीवत्स चिन्ह उनके छाती पर है, उनके बाल बहुत घने हैं। तो ऐसे सारा जब वर्णन करने लगे, उन्होंने कहा कि हे मेरे पुत्र, आप केवल भगवान के इस रूप का चिंतन करो, किसी और वस्तु का चिंतन करने की आवश्यकता। उसी समय उनके पुत्र सालवेग ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने कहा कि मैं अपने मन हृदय को दूर सारी चीजों से दूर हटाकर केवल वृंदावन नाथ वृंदावन चंद्र कृष्ण का ध्यान करूंगा, स्मरण करूंगा। फिर उनके हृदय में एक प्रश्न आया, उन्होंने अपनी माँ से पूछा, उन्होंने पूछा कि मुझे बताओ कि भगवान को और सरलता से प्राप्त करने के लिए कुछ मंत्र भी है क्या। क्या पूछा, क्योंकि उनको थोड़ा सा ज्ञान था कि ये लोग भगवान मीन्स मंत्र भी होते हैं कुछ। तो उन्होंने माँ से पूछा कोई मंत्र है क्या, तो उस माँ ने कहा एक मंत्र है, महामंत्र, हरे कृष्णा हरे
कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम हरे
राम 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 हरे हरे।
और जोर से
हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
सालबेग ने सुना, कृष्ण कृष्ण कहने लगा। क्या कहने लगा,
जोर
से
और
लाउडली।
तो
माँ रोमांचित हो गई, गदगद हो गई, उन्होंने कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, माँ होना सार्थक हो गया। क्या हो गया, क्योंकि मेरे पुत्र की जीवा से कृष्ण के नाम उच्चारण हो रहा है, मेरा पुत्र कृष्ण का चिंतन करने लगा है। और फिर उन्होंने कहा भगवान का गंभीरता से तुम भजन करोगे, 12 दिनों में आप कृष्ण को कृष्ण की अनुभूति करोगे। कितने दिनों में,
12 दिनों
में तो हमें माला पकड़नी नहीं आती, या हरे कृष्ण महामंत्र समझ में नहीं आता, उल्टा पुल्टा कितनी बार बोलना होता है, हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम। जब नया नया व्यक्ति होता है उसकी हालत खराब हो जाती है। तो फिर इतना गंभीरता से वो लगे और बल्कि उन्होंने उनकी इच्छा थी कि मेरे ये जो कष्ट है शरीर मतलब मरने वाले थे, इतने बड़े बड़े घाव थे, हाँ तो उन्होंने कहा ये वृंदावन चंद्र कृष्ण मुझे क्योर करे, ठीक करे, इस भावना से वो लगे थे। इस प्रकार से 11 दिन हो गए, कितने दिन,
11
कुछ हुआ ही नहीं, सोचने नहीं, आंखें खोली 11वें दिन में आंखें खोली उन्होंने। हाँ सोचो हमें कितनी तपस्या होती है, हमारी आंखें एक घंटे के लिए बंद होती है, जब क्लास शुरू होता है खत्म होने तक क्या होती है, बंद होती है, जब प्रवचन शुरू होता है तो आंखें बंद, बाद में खुलती है। तो आप सोचो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते कलयुग के, जो तपस्या कर ही नहीं सकते। मैं हिरण्यकश्यप के बारे में कल सोच रहा था, वो ऐसे अंगूठे पर खड़े थे और हाथ ऐसे दोनों ऊपर करके और 100 दिव्य वर्षों के लिए देवताओं के। सोचो हमें जब कहा जाता है कि हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करना है, एक बार हाथ ऊपर करो तो भी परेशानी होती है, दो बार और थक जाते हैं, तीसरी बार तो नीचे, तो मतलब हम बहुत कठिन है कलयुगा में तपस्या, लेकिन एक तपस्या इजी है, अपने जीवा से क्या करो,
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे राम 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 हरे।
जीवा से उच्चारण करो कृष्ण नाम और जीवा से स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद ग्रहण करो। तो अभी इन्होंने 11 दिन हो गए आंख खोली और माँ को कहा, माँ कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, ना कृष्ण की अनुभूति और ना मेरे शरीर के कष्ट दूर हो गए। मदर ने कहा 12वें दिन होगा, कितने, बल्कि इनमें बहुत लालसा थी कृष्ण के लिए, और अभी 11वें दिन कृष्ण के लिए रोने लगे थे वो, मतलब 11वें दिन इसलिए आंख खुले कि भगवान का जो गुणगान है उनकी जीवा से निकल रहा था, इतने सॉन्ग्स निकले उनकी जीवा से, इतनी प्रार्थनाएं निकले। आज भी आप जगन्नाथ टेम्पल जाते हो ओडिशा या ओडिशा में जाते हो, गांव गांव में सालबे के द्वारा जगन्नाथ की स्तुति हेतु या कृष्ण की स्तुति में जो निकले हुए गीत है उनका लोग गायन करते, रोज जगन्नाथ टेम्पल में मॉर्निंग में एक गीत गाया जाता है जो सालबे में गाया हुआ है। तो फिर भगवान ये सोते हैं और रात्रि में हाँ फिर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और जिनके द्वारा उनको एक एक प्रकार की विभूति देते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सुबह जब 12वें दिन आग खोली, सालबेन ने देखा कि किसी भी प्रकार का घाव आदि मेरे शरीर में नहीं है और मेरा मन कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहा है, तो पागल हो रहा हूँ। फिर उनके मदर को पूछा, उन्होंने कहा कि अभी जो मेरा बचा हुआ जीवन है वो केवल मैं बिताऊंगा कृष्ण की सेवा के लिए, इस संसार में बहुत सारे कार्य में कर चुका हूँ, लेकिन बचा हुआ जो जीवन है कृष्ण की सेवा करूंगा वृंदावन जाकर। कहा तो वो अपनी माँ को पूछते वृंदावन के बारे में, यही है माता पिता होने का मतलब है, इसलिए ऋषभदेव कहते हैं उसे माँ बनने का अधिकार नहीं है जब पिता को कौन सा रास्ता, अपने पुत्रों को कौन सा रास्ता ना दिखा पाए, वृंदावन का या वैकुंठ का या आध्यात्मिक लोक ना ले जा पाए। तो उसी प्रकार से ये वृंदावन आते हैं, वृंदावन रहते हैं, सेवा करते हैं। एक दिन आता है जिस दिन रथ यात्रा होने वाली थी, कहाँ की रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। इस साल में एक को पता चला कि अरे आज जगन्नाथ में, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है, और उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा आज मुझे कहाँ जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। भगवान आज के दिन क्योंकि ये मुस्लिम थे तो अंदर तो दर्शन करना अलाउड नहीं है, तो भगवान इतने दयाशील है कि बाहर आते हैं। इस संसार में एक प्रकार से देखा जाए एक ही विग्रह बाहर आते हैं और बड़े थाट बाट से, जिनके स्वागत में इतने लोग किसी और भगवान के लिए बाहर नहीं दिखाई देते, और उनके सेवक भी कितने होते हैं। तो भगवान आते हैं बाहर, इसलिए वो चाह रहे थे भगवान का दर्शन करो। तो इन्होंने सोचा अभी मैं वृंदावन में हूँ, अभी निकलूंगा, तो आज सुबह रथ यात्रा शुरू होने वाली है और वो अभी कहाँ है, वृंदावन में इतनी तीव्र लालसा हृदय में जाग उठी, वृंदावन में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और एक प्रार्थना उनके मुख से निकले कि हे जगत बंधु, हे गोसाई, हे जगत के बंधु, वास्तव में कोई बंधु हमारा इस संसार में है तो वो जगन्नाथ है। कौन है? कृष्ण है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, हे जगत बंधु, हे गोसाई, हे जगत बंधु कृष्ण जगन्नाथ, मैं उस 750 किलोमीटर दूर हूँ। कितने? उस सॉन्ग में उन्होंने लगाया 750 का, इतना मैं दूर हूँ, बताओ मैं कैसे आऊँ आपका दर्शन करने के लिए, और आपसे मैं निवेदन करता हूँ जब तक मैं नहीं पहुंचू तब तक रथ के ऊपर ही रहना। कहाँ रहना? आप ऐसी कोई रथ यात्रा है कि अभी वृंदावन से? ऐसे नहीं, ये भी नहीं था कि उन्होंने सोचा चलो फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाता हूँ 2 घंटे में भुवनेश्वर, वहां से 1 घंटे में कार से चला जाऊंगा, ट्रेन में नहीं थी तो इनको चलना था यहाँ से। और यहाँ से जब उनकी हृदय द्रवित करने वाली और कृष्ण प्रेम से भरी हुई ये जो पुकार है जगन्नाथ ने कहा सुने, कहा सुने? जगन्नाथपुरी में। और भगवान रथ के ऊपर बैठे थे और फिर उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तभी आप आगे चलना। तो जब फिर ये निकल पड़े वृंदावन से, भगवान के पास बिल्कुल शक्ति सामर्थ्य नहीं था इनके बातों को टालना। उन्होंने कहा आऊंगा तो भगवान ने कहा मैं बैठा ही रहूंगा, और 3 महीने से ज्यादा समय लगा उनको चलने में, और जगन्नाथ रथ से नीचे उतरे नहीं। 3 महीने उस साल भगवान रथ के ऊपर ही बैठे रहे और फाइनली देखा कि नजदीक वो आए हैं। भगवान ने स्वप्न में आकर अपने पुजारियों को कहा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ मेरे भक्त सालबेग का। वो आते हैं, रथ का स्पर्श करते हैं तो भगवान निकल पड़ते हैं। तो आज भी वो स्थान बलगंडी नाम का स्थान है जहाँ सालबेग का समाधि है, भगवान हर साल वहां थोड़ा सा रुकते फिर जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए कितने महान भक्त हुए, किसने प्रेरित किया उन्हें? किसने? माँ ने। सोचो कितना बड़ा रोल है। तो मदर वास्तव में शिल्पी, शिल्पी सही शब्द है, शिल्पी है, जो शिल्पकार है। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन इसलिए है जिसमें हमें कृष्ण की कृपा देखनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु हमेशा 2 शिक्षाएं देते थे। चैतन्य महाप्रभु के पास जब रथ यात्रा खत्म होकर डिवोटी जाते थे जगन्नाथपुरी, जिनको वापस जाना होता था नवद्वीप, तो चैतन्य महाप्रभु को पूछते थे कि अभी हमने जगन्नाथपुरी में बहुत निवास किया, अभी हम 1 साल के लिए फिर घर जा रहे हैं, बताइए जब तक अगली बार आपसे नहीं मिलेंगे तब तक हमें क्या करना चाहिए? क्या पूछा? नेक्स्ट टाइम जब आपसे नहीं मिलेंगे तब तक हमें क्या करना चाहिए? कोई पूछता है ऐसे? अच्छा है वो प्रभु जी मिले ही ना, पूछते रहेंगे कि आपने ये किया कि नहीं किया या कुछ इंस्ट्रक्शंस। हम तो दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वो डिवोटी जाते थे और महाप्रभु से पूछते थे। चैतन्य महाप्रभु 2 चीजें बताते थे, नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन। क्या बोलते थे?
नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन।
जोर से,
नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन।
चैतन्य महाप्रभु कहते थे तो आप जाओगे वापस तो एक चीज करो, कृष्ण नाम का संकीर्तन। कृष्ण नाम आपके जीवा से निकलना चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
और दूसरा है भक्तों की सेवा, वैष्णवों का सेवन। इस प्रकार से ये 2 चीजों में हम लगे रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण का स्मरण हमारे लिए सरल हो जाता है। और वास्तव में सबसे बड़ा गेन हमारे लाइफ में है कृष्ण का अत्यधिक स्मरण। और इसलिए हम सब एकत्रित आते हैं और एकत्रित आकर कृष्ण के नाम कीर्तन करते हैं, कृष्ण के बारे में सुनने का प्रयास करते हैं। तो आज विशेष दिन है वृंदावन दास ठाकुर का, जिनका हमें स्मरण करना चाहिए, जिनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। और हम प्रभु जी और माता जी का विशेष धन्यवाद देते हैं कि जिनके कारण हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सही है कि नहीं? और वास्तव में वो इंस्ट्रूमेंट बने हैं, हम यहाँ एकत्रित आकर कृष्ण के नामों का कीर्तन और कथा को सुन सके। तो उनके लिए लाउडली हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान से श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में हमेशा इस प्रकार की कीर्तन कथा होते रहे और उन दोनों को सामर्थ्य भी दे कि वो कृष्ण की यथोचित रूप से सेवा कर पाए। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
श्रील वृंदावन दास ठाकुर तिरुभावतिथि महामहोत्सव श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के ताई गौर प्रेमानंदे समवेत गौर भक्त वृंद के
इस ग्रह सर्व साक्ष प्रभु की सभी भक्ति भक्त वृंद की सभी श्रोता भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे।